ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के इकट्ठे ही उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ के प्रारंभ में सब मिलकर के बोला करते थे, ओम की ध्वनि लगाया करते थे। गहरा श्वास अंदर लें और उसके बाद धीरे धीरे निकालते हुए ओम शांति की ध्वनि करें। ओ शांति की ही मधुर ध्वनि है कि इसके भाव में स्थित होने से मन जीते जगत जीत सहज ही बना जा सकता है। ओम का अर्थ तो बाप दादा ने हम सब बच्चों को बताया ही है, अहम आत्मा मम ये शरीर, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, और ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप। और जब जीतने की बात आती है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का हो, व्यवसाय का हो, संबंधों का हो, या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो जहाँ जीत होती है वहाँ क्या होता है, खुशी होती है, उमंग होता है, उत्साह होता है और हमेशा ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो मन को जीतने का या मन को वश करने का बाप दादा ने कुछ सहज ही प्रयोग बताए हुए हैं और हमने स्वयं भी जो साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में और उनकी अंतिम कर्मातीत अवस्था के समय जो स्थिति देखी, उन सब का वर्णन और श्रवण करते हुए मंथन करते हुए आज हम सब लोग ये विचार करेंगे कि किस प्रकार से मन अर्थात जो आत्मा की विचार शक्ति है उसके ऊपर हम सहज ही कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। मन जीते जगत जीत जो कहा जाता है, हमें कैसे पता चले कि मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होता जा रहा है, मन हमारे वश में होता चला जा रहा है? ये अपने मन की विचारधारा से मुख्य तीन बातों से हम एक जान सकते हैं। पहली बात, मन जो संकल्प शक्ति का नाम है, तो हमारे मन में कितने संकल्प आते हैं, संकल्पों की संख्या कितनी है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन के अंदर जो विचार आते हैं बहुत, उनकी संख्या काफी होती है, लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर से देखा जाए तो हर 2 सेकंड में एक विचार आता है, प्रति 2 सेकंड में एक विचार, यानी कि 1 मिनट में कितने विचार हो गए, लगभग 30 विचार हो गए। और इस प्रकार से सारे दिन भर में मन के अंदर विचारों की संख्या लगभग 25-30 हजार विचार आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इन विचारों को मन हैंडल कर सकता है। लेकिन समस्या तब होती है जब विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, 25-30 हजार के बजाय 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 70,000 जब विचार होने लगते हैं तो विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और जब विचारों की संख्या बहुत बढ़ती है तो हम सभी का क्या अनुभव है? पहली बात तो विचारों की संख्या बढ़ती कब है, कब बढ़ती है? जब कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है, एकाएक ही चैलेंजिंग सिचुएशन, जो हमें लगता है बड़ी कठिन है, कैसे पार करेंगे, क्या होगा, और जब उसमें विचारों की संख्या बढ़ने लगती है बहुत, फिर मन में तनाव होता है। उदाहरण के तौर पर मानो आप सब यहाँ बैठे हैं बड़ी शांति से, आबू मधुबन का ये वातावरण शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण है, बहुत आनंद ले रहे हैं, लेकिन सडनली आपके मोबाइल में कोई मैसेज आता है कि आपके फलाने मित्र संबंधी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या बहुत सीरियस है, या ऐसी परिस्थिति जो आपने सोचा भी नहीं होगा हो गया, तो बस विचारों की संख्या एकदम बहुत बढ़ जाएगी। क्या होगा उसके परिवार का, कैसे होगा, कहाँ होगा, आदि आदि। तो विचारों की संख्या जब बढ़ती है तो एक है मन के विचारों की संख्या से हम मन की स्थिति को जान सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। दूसरी चीज है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। एक है विचारों की संख्या, दूसरी है विचारों की क्वालिटी, गुणवत्ता। कैसी विचारों की क्वालिटी, उसमें कितनी सकारात्मकता है और कितनी नकारात्मकता है। और जब विचारों की संख्या में, जैसा कलयुगी दुनिया में अधिकतर होता है, नकारात्मकता ज्यादा होती है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि आदि, इनके वशीभूत होकर के जब ऐसे नकारात्मक विचार अगर आते हैं तो क्या होता है, विचारों की संख्या बढ़ जाए और विचारों में नकारात्मकता अगर आने लगे तो फिर विचार तो आत्मा का अंग है, तो उसका प्रभाव शरीर पर बहुत तेजी से पड़ता है और शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। और डॉक्टर भी आजकल ये कहते हैं कि लगभग 80% से अधिक बीमारियां मन के विचारों के कारण होती है। जितनी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता, बहुत सोचना बहुत ज्यादा, तो नकारात्मकता। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट और दूसरा क्वालिटी ऑफ थॉट्स, और तीसरी है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा। और इस कारण से जब विचारों की दिशा बहुत ज्यादा हो जाती है, आपने देखा होगा अभी अभी एक विचार आ रहा है, अभी मन चला गया घर में, घर के विचार आ गए, कोई धंधे के विचार आ गए, कोई एंटरटेनमेंट के विचार आ गए, खेल कूद के, यानी चारों तरफ मन भागता रहता है, तो वो विचार कमजोर होते रहते। और जब विचारों को हम एक ही दिशा दे देते हैं, उन विचारों में शक्ति आ जाती है। बचपन में हम सब ने कहानियां पढ़ी है कि भाई लकड़ी का बंडल अगर होता है पूरा हो तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन एक एक लकड़ी को अलग कर दिया जाए छोटी छोटी तो सहज तोड़ सकते हैं। तो जब एक एक विचार अलग अलग दिशा के होते हैं वो कमजोर होते हैं, और जब एक ही दिशा में तो शक्तिशाली। और बचपन में हम सब ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि सूरज के सामने वो एक लेंस अगर रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो सूरज की गर्मी साधारणतया अच्छी लगती है ठंडी के दिनों में जैसे, या शरीर सह लेता है, लेकिन जब उसके सामने लेंस रख दो और सारी किरणें एक ही जगह फोकस हो जाती हैं, तो जो चीज होती है वहां आग भी पैदा हो जाती है, जल जाता है। वही सूरज है, वही किरणें हैं, लेकिन उनको एक जगह दिशा दे दी तो बस इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी पैदा हो गई कि उसके अंदर वो जो भी चीज रखी है वो जल जाती है। तो मन जीतने में ये तीनों चीजें बहुत कार्य करती हैं, विचारों की संख्या और विचारों की क्वालिटी, गुणवत्ता। और अक्सर करके ये होता है कि जितने विचारों की संख्या ज्यादा होगी उतनी क्वालिटी कम होगी, और जितने विचारों की संख्या कम होगी उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी, और दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। मानो एक परिवार है, उसमें दो परिवार हैं, एक परिवार में चार सदस्य हैं, एक में आठ सदस्य हैं, दोनों की आमदनी एक जैसी है, तो किसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस परिवार का ज्यादा अच्छा होगा? जिसमें कम सदस्य हैं, क्योंकि उतने ही पैसों में, उतने ही आमदनी में कम लोगों का भरण पोषण करना है, और उतनी ही आमदनी में ज्यादा संख्या का भरण पोषण करना है, तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जितनी क्वांटिटी हमारी कम होगी उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स ज्यादा अच्छी होगी। तो इसीलिए जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए, क्वांटिटी मन में बहुत संकल्प हो, परिवार में रहते हुए बहुत परिस्थितियां आती हैं, कभी स्वास्थ्य की, कभी पैसे की, कभी संबंधों की, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है, तो क्वांटिटी विचारों की संख्या जब बहुत बढ़ जाती है तो उस समय हम क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाने का नाम ही राजयोग है। राजयोग में क्या होता है? योग में हम सब जानते हैं, बहुत समय से, अलग अलग समय से बाबा के बच्चे हैं, बस योग आए, लाल लाइट हुई, कोई गीत वगैरह बजा तो बस योग में, हाँ, बैठे, जितना जितना योग में क्वालिटी बढ़िया होती जाएगी उतना उतना विचारों के ऊपर और नियंत्रण होता चला जाता है, और इस रीति से विचारों को ठीक दिशा देना, उससे हमारे मन के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त होता जाता है। हम सबके सामने आइडियल, हाँ, रोल मॉडल जो है वो है कौन? ब्रह्मा बाबा। देखो, ज्ञान सबने लिया, हम सब, मुझे भी 50 साल से ज्यादा हो गया, बहुत हैं 60, 70, 75, 78 साल हो गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा कितने साल में संपूर्ण बन गए? कितने वर्ष में? सिर्फ 33 वर्ष में। 1936 में ज्ञान लिया, अपना यज्ञ शुरू हुआ, और बस 1969 में जनवरी 18 को बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त हो गए। तो इतने कम समय में बाबा क्यों, कैसे अव्यक्त हुए, और हम सब भी और जल्दी से जल्दी कैसे फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके, मन जीते जगत जीत स्थिति को प्राप्त करके, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, ये हम सबका लक्ष्य पूरा होना चाहिए। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा बाबा को भी ना, जब 1936 में ज्ञान हुआ उससे पहले से ही बाबा थोड़ा सा एकांत प्रिय होने लगे थे, और जब ये ईश्वरीय ज्ञान हुआ बाबा को, तो बाबा के सामने भी यही समस्या पहली आई कि मन बाबा का भाग जाता था, क्योंकि इतना बड़ा धंधा भी फैला हुआ था, सब तरफ परिवार साधारण ही था, साधारण माने बाल बच्चे सब कुछ थे, धंधा था, तो मन का भागना स्वाभाविक है। और मन बार बार चला जाता था। तो बाबा ने क्या युक्ति अपनाई? बाबा ने सुना होगा, बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? गौर से सुनना कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू ज्यादा बलशाली हो गया, तूने मुझ राजा को कमजोर कर दिया और तू भागता रहा इधर से उधर, और तू जहां जहां भागता रहा मैं आत्मा राजा भी तेरे पीछे पीछे भागती रही। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित होती जा रही हूं, स्थित हो गई हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं और तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ने मन को ऑर्डर किया। भक्ति मार्ग में अक्सर करके हम क्या कह देते हैं, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, कुछ नहीं कर सकते, उसके सामने जैसे पराधीन हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा ने जैसे रियलाइज किया और कि मन तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, ऑर्डर दिया। बस जब हम ऑर्डर देते हैं तो उसको हमारे कहने पर चलना पड़ता है। लेकिन ऑर्डर भी कौन दे सकता है? जो सत्ता में होगा, जो सीट पर सेट होगा। आजकल भी है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होता है या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब तक वो सत्ता में होता है तब तक हर एक कोई उसकी बात मानता है। लेकिन वो सत्ता में ना हो, रिटायर हो जाए और ट्रांसफर हो जाए, चला जाए, तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानता। ऐसे ही अगर मन को हम ऑर्डर देके उसे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो पहले मुझे अपने स्वाभिमान की सीट पर सेट होना पड़े और उसके बाद मन को ऑर्डर करना पड़े। अब बाबा ने तो बहुत बहुत हम लोगों को अपने स्वाभिमान की बातें बताई हुई है। बस अमृत वेले से उठकर अपने उनमें हम स्थित हो जाए। ओ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, मेरे सामने कुछ भी असंभव नहीं है, मैं बाबा के मस्तक मणि हूं और बाबा के सिंह अपने यहाँ सिंहासन पर स्थित होकर के मैं आत्मा अपने इन कर्म इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कार इनको ऑर्डर कर रही हूँ, मैं राजा हूँ। बाबा हम आपके दिल तख्त नशीन आत्मा है, हम वही विजयी आत्मा है। अपने मन को हम ये कभी ना सोचें क्या होगा, कैसे होगा, मैं विजयी बनूंगा या नहीं। नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज मन, और उससे भी शक्तिशाली चीज है सबकॉन्शियस माइंड, अर्थ चेतन मन। उसको जो भी संकल्प दिया जाता है वो उसके में बंध जाता है। इसीलिए बस बाबा कल पहले भी मैं विजयी बनी थी आत्मा, अभी भी आप मुझे विजयी बना रहे हो, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा। बस ये संकल्प हम अपने अंदर जब डाल लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो क्या होता है, वही संकल्प बार बार हमें स्मृति में आता है और वो धीरे धीरे हमें हमारे संकल्पों के ऊपर विजयी बनाता जाता है। इसीलिए मन को हम उसकी क्वालिटी को, विचारों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयत्न करते रहेंगे तो समय पर वही क्वालिटी हमारे विचारों की क्वांटिटी संख्या को कम करेगी और हमें उच्च स्थिति में, ऊंचे सिंहासन पर स्थित करा देगी। दूसरी बात, साथ साथ एक तो इन तीन बातों से हम अपने को पहचानते चले, दूसरी बात कि जब मन जीते, जगत जीत बोलते हैं, तो जगत के अंदर तो सब चीज आ जाती है। लेकिन कंडीशन यही है कि मन जीते, मन को जीतने की बात है। तो इसीलिए मन के अंदर जब भी विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, तो जैसे बाबा ने मन को पहले ये पत्र लिखा, फिर बाबा ने बुद्धि को भी यही पत्र लिखा, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं भी तुम्हारे वशीभूत हो गया। लेकिन हे बुद्धि अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं। क्योंकि मन विचार करता है और बुद्धि जब निर्णय देती है तो जैसे मन विचार करता है बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए बुद्धि को शार्प करना वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने जैसे कहा है ना कि मन और बुद्धि ये जो बातें हैं, बुद्धि का विकास हमेशा कहाँ होता है? एकांत में होता है। सही समय पर सही निर्णय आए, बुद्धि में टच हो, वो है बुद्धि की सत्वप्रधानता, बुद्धि की शार्पनेस, कुशाग्रता। इसीलिए बुद्धि का विकास एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। तो यदि हम जीतना चाहते हैं, कलप कलप की बाजी जीतना चाहते हैं, तो इन दोनों में रहकर हमें चलना पड़ेगा। संगठन में तो हर एक कोई रहता ही है, लौकिक परिवार में भी चाहे संगठन होता है अपने लौकिक परिवार का, या दैवी परिवार के अंदर भी सब सेवाधारियों का, भाई बहनों का संगठन, उसमें तो हमारे चरित्र का विकास होता है। संगठन में हमेशा अटेंशन रहती है कि कोई ऐसी बात न हो जिससे कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। तो इसीलिए एक संगठन में अपने ऊपर अटेंशन रहता है और उसमें बुद्धि का उतना विकास होने की संभावना नहीं है। बुद्धि का विकास हमेशा एकांत में, जिसे बाबा कहता है मनन चिंतन में, मंथन में, विचार सागर मंथन, इन सब चीजों में जाओ तो बुद्धि का विकास होगा। और ये मनन चिंतन ये सब एकांत में होता है। तो प्रतिदिन हम ऐसा समय अवश्य निकालें कि जब बहुत सेवा होती है, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा समय एकांत के लिए, मन का बुद्धि का एकांत। वो एकांत जब होगा उसमें जो बाबा ने मुरली में कहा है, वो जो बाबा हमसे चाहते हैं, हमें अपनी प्रोग्रेस का भी होगा कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कहाँ तक हमें पहुंचना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी ना, जब ब्रह्मा बाबा को, हाँ आप सबने सुना है, जीवन कहानी पढ़ी होगी कि ब्रह्मा बाबा को भी जब संदेशियों ने बताया, गुलजार दादी तब बहुत छोटे थे, बाबा सूक्ष्म वतन में आपके जैसा ही ब्रह्मा बाबा लाइट वाला है, लेकिन उसका लाइट बहुत तेज है, शक्ल सूरत सब आप जैसी है। बस तब से ही बाबा को एकदम बुद्धि में हो गया था मुझे वैसा ही लाइटधारी बनना है। तो समय प्रति समय बीच बीच में कई बार बाबा संदेशी से भी पूछते थे, बच्ची जाओ देखो अब कितना फर्क है उसमें और मुझ में। और जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा था, संदेशी बताती थी, बस बाबा बिल्कुल आप में और उनमें बहुत कम लाइट भी लगभग, फिर भी उनमें थोड़ी लाइट और ज्यादा है। और हमें याद है जब 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा था तो हम यहीं पर ही थे मधुबन में, और 17 जनवरी की सुबह आ गए थे, और 17 और 18 जनवरी दो दिन बाबा की पूरी कर्मातीत स्थिति देखने को मिली और देखा बिल्कुल। जब 18 जनवरी को बाबा ने शरीर भी छोड़ा और उसके बाद संदेशी को भेजा गया, हाँ बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थी, संदेशी दादी यहाँ हुआ करती थी, तो संदेशी दादी को ऊपर भेजा कि देखो ये क्या, क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि बाबा शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो बस पहले तो वो संदेशी जा ही ना सके ऊपर तक, और फिर जब गई तो उसने देखा कि वहां तो बस बिल्कुल मैंने देखा और बाबा थे और बिल्कुल एक जैसे लाइट माइट शक्ति सब, और शिव बाबा की गोदी में ही जैसे कि ब्रह्मा बाबा दोनों बाप दादा, लेकिन कोई अंतर ही नहीं पता ही, मैं पहचान ही नहीं पा रही थी कि लाइट वाला ब्रह्मा बाबा हमारे वो कौन है और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा कौन है। यानी आत्मा जब अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो बिल्कुल सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा के सामने तो उनका अपना स्वरूप था, हम सब बच्चों का भी स्वरूप सूक्ष्म वतन में जैसे वही लाइट की स्थिति का स्वरूप है, हम सबको भी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये इस पर का मुख्य आधार एक तो विचारों पर है, क्योंकि जैसा मन के विचार होंगे वैसी वाणी होगी, वैसा ही कर्तव्य होगा कर्म व्यवहार, और उसी के अनुसार ही सब चलता है। इसीलिए कहा गया है ना कि जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति कर्म करना, जैसी कृति कर्म वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसी सृष्टि। तो इन सब का आधार जैसे कि स्मृति से, स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति प्रवृत्ति और सृष्टि, तो ये एक अपने को ये चेक करते चलना है कि हमारा, क्योंकि ज्ञान में भी जब आते हैं पहले हम सब देखते हैं वो हमारा सृष्टि हमारा प्रवृत्ति सुधरती है, प्रवृत्ति से कर्म सुधरते जाते हैं, और सूक्ष्म मन तक वृत्ति तक बाबा हमें अति सूक्ष्म वृत्ति और स्मृति तक ले जाना चाहता है कि वहां तक पहुंच के हम अति सूक्ष्म संपूर्ण पवित्र कर्मातीत अवस्था में स्थित हो जाए। ब्रह्मा बाबा में और देखा हम इसमें, क्योंकि रोल मॉडल बाबा है ना, तो इसीलिए हमें चूंकि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अंतिम दो दिन बाबा के साथ ही साथ थे तो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, और उस समय हमने देखा मन जीते की स्थिति क्या है वो पहली बार हमने देखी। क्या देखा, हमेशा तो जब बाबा से मिलते थे बाबा के पास जाते थे बाबा हाँ बच्चे हालचाल पूछते थे बस क्या सेवा चल रही है, और अब पूरा समाचार सुन के बाबा अपना राय दिया करते थे, डायरेक्शन देते थे कैसे चलना है। लेकिन उन दिनों हमने क्या देखा दो दिन में मन जीते की स्थिति, कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे लगभग 6-7 बार मिलने का सौभाग्य बाबा से हुआ, तो बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने थोड़ा दृष्टि दी और मन का भाव समझ गए, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि मन के अंदर क्या है वो तुरंत पढ़ के और उसका समाधान तुरंत बाबा ने दे दिया, एक बार नहीं लगभग 6-7 बार दो दिन के अंदर। और ये कब हो सकता है, जैसे पानी होता है ना, पानी निर्मल हो साफ हो स्थिर हो हम अपनी परछाई भी प्रतिबिंब भी उसमें स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन पानी में अगर हलचल हो एक छोटा सा कंकड़ पानी में डाल दो लहरें पैदा हो जाएंगी तो अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही अगर हमारे अपने मन में कोई भी संकल्प होंगे कोई विचार होंगे तो हम दूसरे के संकल्प को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे अपने मन के संकल्प उसमें मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए जब अपने मन के ऊपर जिसने भी पूरी विजय प्राप्त की होगी संकल्पे वो दूसरे का मन के भाव को तुरंत पढ़ लेगा, और ये हमने अनुभव किया उन दो दिनों में भी और 18 जनवरी की रात्रि क्लास में भी, मधुबन में हिस्ट्री हॉल तो सबने देखा है, तब तो वही था, उसी में ही बाबा क्लास कराते थे। तो बाबा ने बस उस दिन 18 जनवरी की रात्रि को बाबा क्लास करा रहे थे, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे, जो भी मधुबन के 25-30-40 भाई थे, भाई बहने सब बैठे थे, दादी प्रकाशमणि जी सामने ही बैठे हुए थे। तो मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एकाएक विचार आया कि बाबा कुछ और हाँ बोले, हमारे लिए भी बोले, पुरुषार्थ की बात बोले और बाबा, जिससे और हमें मार्ग प्रदर्शना मिले। तो बस मन में संकल्प आया, और बाबा तो चूंकि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, बाबा तक वो संकल्प पहुंचा होगा, और तुरंत ही बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो आज तक भी टेप के अंदर वो भरे हुए हैं 18 जनवरी की रात्रि क्लास में। और इस रीति से बाबा ने जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि भक्त जब हाँ भगवान को याद करता है, भगवान के सम्मुख अपनी कोई इच्छा रखता है, तो भगवान क्या करते हैं, बस एक ही शब्द निकलता है, तथास्तु, और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो बस ये ही बात, मन में संकल्प उठा, बाबा कुछ बोले, बाबा तक पहुंचा, तो यही भगवान का, क्योंकि बाबा ने कहा इस समय हम सब, कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था, हम सब अपनी प्रजा भी तैयार कर रहे हैं, राजाई भी, प्रजा भी, और भक्त भी हम तैयार कर रहे हैं, जो द्वापर युग से हमारी मूर्तियां रख करके वो पूजा करेंगे। तो हम सभी तो हैं, द्वापर युग से श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, और ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण की आत्मा ही है। और इस रीति से मन में जो भी होगा वो तुरंत बस हमारे जो इष्ट देव हैं उन तक पहुंचता है, और उस हिसाब से हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो ये बाबा का खास देखा, इसीलिए मन जीते जगत जीत का एक ये लक्षण है कि अपने मन पर संपूर्ण विजय, और इसी को ही इच्छा मात्रम अविद्या कहा गया है। कोई इच्छाएं मन के अंदर जो न हो, इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए, ये बाबा का प्रत्यक्ष देखा। और मन जीते जगत जीत का क्या लक्षण देखा बाबा में, क्योंकि उस दिन बाबा ने मुरली चलाई वैसे नॉर्मल केस में, और बाबा को कई बार खांसी भी आती थी, उम्र भी थी 93 इयर्स एज थी, सर्दी का मौसम भी था, और बाबा को तबीयत भी थोड़ा उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन 18 जनवरी की रात्रि क्लास को बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। नॉर्मल केस में जब खांसी आती थी ना, तो जो मन जीते जगत जीत का लक्षण यह है, मन माने अंदर की स्वस्थिति, वो स्वस्थिति परिस्थिति पर तुरंत विजय प्राप्त कर लेगी, ये है मन जीते जगत जीत का। अभी क्या होता है, अभी तो परिस्थिति बाहर की स्थिति जैसी होती है वो हमारे मन पर प्रभाव डालती है। मानो कहीं किसी के अंतिम संस्कार में गए मुर्दा घाट में शमशान, तो वहां कहीं किसी की मृत्यु हो गई, तो वैराग्य की भावना, क्योंकि बाहर परिस्थिति में वातावरण सन्नाटा, वैराग्य की भावना है, हमारा मन भी वैरागी होने लगता है, क्या जीवन है, दो दिन का जीवन है आदि आदि। लेकिन जो आत्मा शक्तिशाली होगी, स्वस्थिति शक्तिशाली होगी, वो परिस्थिति को बदल देगी। और बाबा का हम यही देखते थे हमेशा, तभी भी हमने ये देखा कई बार, बाबा को जैसे खांसी आती थी, खांसी में आंख भी गीली जैसे हो जाती थी, लेकिन इतनी बाहर की परिस्थिति शक्तिशाली होती थी, खांसी में तकलीफ जैसे लगता था देखने वाले को, लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा कहता था, देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, वो कलयुग की दुनिया है, और शरीर के अनेक कर्म भोग हैं, खांसी आती है, ये कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का पिक्चर रहता था, और ट्रांसलाइट के पिक्चर तो कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का कल ऐसी दुनिया होगी और बस बाबा खुशी में, जैसे बाबा कहता है खग्गियां मारनी चाहिए हा? तो ये सिंधी शब्द है खग्गियां, तो बिल्कुल बाबा का स्वरूप। एक मिनट पहले जो खांसी आ रही थी, तकलीफ हो रही थी, और बाबा उस बात को देखो, बाबा कल जाके ये बनेगा ऐसी दुनिया, कोई शारीरिक व्याधि नहीं, कोई प्रकृति भी सुखदायी होगी और ऐसा। तो स्वस्थिति से परिस्थिति पर तुरंत विजय प्राप्त कर लेता था बाबा। और वही बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है कि हम बच्चों की आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि हम कोई भी बाहर की परिस्थिति, तन मन धन सम्मान समय, कोई भी परिस्थिति आए उसके ऊपर हम विजय पाले, उसके वशीभूत न। और ये बाबा का प्रत्यक्ष देखने को मिलता था, ये देखा। और उस दिन 18 जनवरी को और खास क्या देखा कि बाबा को एक बार भी जैसे खांसी नहीं आई, हमेशा आती थी। बाबा विजय प्राप्त करता था तो भी समय लग जाता था, एक मिनट दो मिनट, क्योंकि जब वो तकलीफ दे और तब स्वस्थिति के द्वारा। लेकिन 18 जनवरी की रात्रि को जो बाबा ने मुरली चलाई उसमें देखो एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। और वो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी ना, तो हम भी अपने शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, हम विजयी बन जाएंगे और कोई भी ऐसे व्याधि हमें परेशान नहीं करेगी। तभी तो गायन है, क्या गायन है, अंत मते सो गति का गायन। अंत में जैसी हमारी स्थिति होगी उसके आधार पर ही हमारा सारे 84 जन्मों का आधार है, एक दो जन्म का नहीं, पूरे 84 सारे जन्मों का। और अंत में जिस समय हमारे प्राण इस शरीर से निकलेंगे, अंत मति सो गति। लौकिक दुनिया में भी ना, जब व्यक्ति रिटायर होता है या नौकरी से जाता है तो सारा जो उसको पैसे आदि ग्रेजुटी या फंड वगैरह, प्रोविडेंट फंड या जो भी बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन वगैरह, वो लास्ट पे ड्रॉन, लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC होता है, उसके आधार पर मिलते हैं। लास्ट क्या पे ड्रॉ की है उस पर ये सब चीज, पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो या ग्रेजुटी, सब कैलकुलेट होती है। ऐसे ही इस आधार पर ही लास्ट ब्रीथ, अंतिम समय हमें किन्हीं देहधारियों की स्मृति रही, वैभव की, व्यक्ति वस्तु जो रही, उसके पास जाके हमें फिर से अपना कर्म भोग चुकतु करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा कहता है ऐसी स्थिति हो कि अंत में कोई भी याद न पड़े, कोई भी याद नहीं पड़ेगा, तो उसके आधार पर ही सारे। तो ये प्रत्यक्ष बाबा को भी देखा, और ये तब भी होगा जब हमें कुछ उसका आभास हो जाएगा। जितना जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती होगी उतना उतना हमें आभास भी होता जाएगा हम कितना कितना कर्मातीत अवस्था के निकट जा रहे हैं। अब वो बाबा का भी देखा उस दिन, बाबा ने 18 जनवरी को ना, वैसे रोज रात को क्लास 9 बजे होती है, 9:45 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने ना पहले तो सारा दिन भर यशु दादी को कहा, जो बाबा के तब तो पत्र ही लिखा करते थे ज्यादातर, कि जो भी पत्र बचे हुए हो वो सारे लिखा लो, कोई भी काम पेंडिंग न रहे, आज सारे काम पूरे कर लो बच्ची, पूरे करवा लो। कई जगह बाबा ने साइन किया, और जो ऊपर हमारा म्यूजियम का वो है ना बिल्डिंग नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है, वो बिल्डिंग भी बाबा ने तभी उस वक्त ही क्लियर किया था। और इस रीति से बस बाबा ने कहा, और रोज क्लास 9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने क्लास अनाउंस करवाई कि आज बाबा क्लास जल्दी लेगा 7 बजे। तो सब लोग भोजन आदि करके आ गए और 7:30 तक 7:15 तक सब इकट्ठे हो गए, और उस दिन बाबा ने आके जल्दी क्लास ली। पूरी क्लास में जैसा बताया एक बार भी कोई व्याधि नहीं हुई, और मुरली पढ़ के, मुरली बोल के, बता के बाबा उस दिन क्लास करा के बाबा उठे, और उठ के फिर मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बाबा गए। बस एक दो कदम बढ़े फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा एक एक को दृष्टि देने लगे। एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी। बाबा की दृष्टि बार बार प्रकाशमणि दादी पर आके रुक जाती थी, उनको बाबा बार बार ज्यादा दृष्टि देते थे, फिर बाबा हर एक बच्चे को दृष्टि देते थे। एक दो कदम गए फिर रुके, फिर दो कदम बढ़ के फिर बाबा घूमे, फिर सबको, बस बाबा को हो आज मैं बच्चों को शक्ति से संपन्न कर दूं। क्योंकि बाबा को तो मालूम था ये अंतिम साकार मिलन है। तभी बाबा ने बस हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर जाके कहा, टेप में अभी तक भरा हुआ है, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बाबा गए। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। क्लियर आभास हो जाए बस अब मैं आत्मा इस शरीर से पार्ट पूरा करके अब मैं जा रही है, तभी तो पूरा छुट्टी लेके विदा लेके बाबा गए। अब बस जैसा हम सब ने सुना है, वहां गए और वहां जाके बाबा ने दादी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बस छुट्टी ली और शरीर छोड़ दिया। लेकिन जगत जीत जब हम कहते हैं, मन जीते जगत जीत, तो जगत में तो ये सारी प्रकृति भी आ गई, पांच तत्व भी आ गए, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, जिसका हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो जगत जीत यानी प्रकृति जीत, कल भी मुरली में था ना, आज भी मुरली में ना, माया जीत और प्रकृति जीत वरदान के अंदर आज भी मुरली में था बाबा। तो प्रकृति जीत यानी ये प्रकृति पांच तत्वों का बना शरीर है, प्रकृति जीत का लक्षण भी उसके बाद तभी देखे। बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को रात्रि को, अर्ली रात्रि, लेकिन और बाबा का 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद संस्कार किया गया। क्योंकि सब तरफ से बच्चे आ रहे थे, टेलीफोन टेलीग्राम आ रहे थे, रखो शरीर हम पहुंच रहे हैं। तब ये इंटरनेट और ईमेल ये सब तो होते नहीं थे, तो इसलिए रखा रहा। और लेकिन ब्यूटी क्या, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन कोई ऐसा पदार्थ लगाया गया था बॉडी के लिए, लेकिन लगभग 65 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ था। और सबसे बड़ी बात शरीर के अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो शरीर जैसे कि बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। लेकिन बहुत हद तक, क्योंकि जब 21 को जहां शांति स्तंभ है वहां पर बाबा का अग्नि संस्कार किया गया था, तो जब बाबा का शरीर वहां ले गए और स्नान आदि करा के, तो बिल्कुल वैसा ही चमकता शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, और शरीर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे बाबा सो रहा है। और बस हमेशा बाबा से जब कोई मिलते थे, बाबा अगर टहल रहा होता था या खड़ा होता था घूम रहा, तो बस बाबा हमेशा आओ बच्चे आओ ऐसे दोनों हाथ फैला देता था और हम लोग चुंबक की भांति बाबा की बाह में खिंच के चले आते थे। और आते ही बस कुछ क्षणों के लिए एकदम अशरीरी स्थिति का एकदम अनुभव होता था, जैसे देह से एकदम न्यारे हो गए, विदेही हो गए। फिर कुछ क्षणों के बाद दूसरों को भी मिलना होता था सब, तो बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ 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 बच्चे, ऐसे मीठे मीठे थोड़ी थपकी हंसी देके, जैसे बाबा फिर देह में, कोई आत्मा देह छोड़ के नहीं जाती लेकिन देह से न्यारी स्थिति वो अनुभव होता था। फिर देह में हम लोग जैसे खिंच के आते थे, फिर बाबा टोली खिलाता था और हालचाल पूछता था, फिर एक जाता था दूसरा आता था, इस तरह बाबा से सब मिला करते थे। बस उस दिन भी ऐसा ही लग रहा था, भले 18 जनवरी के बाद 18, 19, 20, 21 जब संस्कार में ले गए कि बिल्कुल बाबा जैसे लेटा हुआ है और बाबा हमेशा की तरह कहेगा आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, कोई गोरा रंग चमकता हुआ शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं हुआ। ये है प्रकृति जीत का लक्षण कि आत्मा तो मन जीते अगर होगा तो प्रकृति जीते अपने आप हो जाएगा। प्रकृति माने पांच तत्वों का ये बना शरीर, और ये देखा ये तो एक बहुत बड़ा और होता है कि कैसे हम प्रकृति जीत बन सकते हैं, एक एक प्रकृति के तत्व के साथ अपना मित्रता करके। लेकिन ये बात जो है कि मन जीते अगर होगा तो जगत जीत, मन जीते जगत जीत, मन जीते प्रकृति जीत, मन जीते सब जीत अपने आप इसके अंदर हो जाती है। तो ये लक्षण बाबा का प्रत्यक्ष देखा, और इसके लिए एक अभ्यास बहुत जरूरी है जो बाबा को बहुत अच्छा अभ्यास था। वो क्या था कि जब चाहे देह में आना और जब चाहे देह से न्यारे हो जाना। मधुबन में बाबा से पार्टियां मिलती थी तो पार्टी या तो झोपड़ी में मिलती थी या हिस्ट्री हॉल में जो है, या बाबा से कमरे में भी, दो तीन चार होते थे तो कमरे में भी मिल लेते थे, अगर और पांच छह सात आठ होते थे तो झोपड़ी में, और बड़ी पार्टी 15-20-25 होते थे तो हॉल में, हिस्ट्री हॉल में। और बस ब्राह्मणी जाती थी, टाइम दिया होता था, मानो 11 बजे ये दिल्ली पार्टी आए, 11:30 बंबई पार्टी आए, 12 बजे कलकत्ता पार्टी, ऐसे अलग अलग। तो बस जो भी पार्टी टीचर जाती थी देखती थी बाबा बस बैठा है, अपनी मस्ती में बैठा है और आंख खुली हुई है, टीचर सामने भी खड़ी हो जाती थी कई बार, और कई बार बस बाबा का जैसे ध्यान ही नहीं। और टीचर कहते थे बाबा बाबा, तो वो बाबा जर्क जैसा थोड़ा सा, अच्छा बच्ची आ गए, हाँ बाबा पार्टी लाई हूँ, हाँ हाँ लाओ लाओ पार्टी को लाओ। फिर पार्टी वाले सब आते थे, बैठते थे, बाबा से मिलते थे, हाल चाल टोली वो सब होके परिचय के बाद फिर पार्टी जाती थी, फिर बीच में अगर थोड़ा टाइम होता था फिर बाबा देह से न्यारा। तो मुख्य बात यह है कि बाबा कहता है जब आवश्यकता हो देह में आओ, कार्य व्यवहार करो, और जब थोड़ा भी फ्री हुए देह से न्यारे होके अपना अशरीरी हो जाओ, और उस समय आत्मा बाप की स्मृति और जो बाबा ने अपने अलग अलग स्थान बताए हैं बुद्धि योग को वहां ले जाओ। एक ये स्थिति आवश्यक है। और ये पेपर जो है, ये चीज जो है, ये हमें देह से न्यारा बनने में बहुत बहुत सहयोग देगा, क्योंकि बाबा ने बताया इस समय ना अंत समय में दो पेपर मुख्य होंगे, एक तो देह का पेपर, लास्ट में लास्ट पेपर है वो है शरीर का, बीमारी का, बस जो भी बचे खुचे हिसाब किताब है वो इस देह से छुक्त होंगे, और उसका सहज साधन है ये देह से न्यारा होने का। और दूसरा बड़ा पेपर है वो है परिवार का पेपर, क्योंकि जब किसी भी आत्मा के कोई संस्कार देखते हैं तो बस लगता है अरे ये 20 साल पुराने, 25 साल, 40 साल पुराने, इनमें भी ये संस्कार, ये कमी, बस जब किसी की कमी कमजोरी की तरफ निगाह जाती है तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है एक परिवार का ये पेपर सबके सामने आएगा, क्योंकि बाबा का परिवार तो बढ़ता जा रहा है। तो इस पेपर में पास होने के लिए बाबा ने क्या कहा है कि एक तो सबको हम तीनों कालों की दृष्टि से देखें। जब वर्तमान देखते हैं सिर्फ, अरे इसमें ये कमी, इसमें अभी तक ये क्रोध, इसमें अभी तक ये संस्कार, तो वर्तमान देखते हैं, लेकिन तुरंत एक तो तीनों कालों की दृष्टि से देखें। ये वही आत्मा है जो सतयुग में महाराजा महारानी थी, अभी भले ये पार्ट है लेकिन फिर से ये आत्मा वो बनने वाली है। और दूसरा ये सोचें कि भगवान ने हमें चुना, ईश्वर के हम चुने हुए रतन हैं, ईश्वर ने ही इस आत्मा को चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए उस पर अगर हमारा फेथ होगा तो कभी भी किसी भी आत्मा की कमी और कमजोरी पर हमारी निगाह नहीं जाएगी। और फिर जब कमी कमजोरी पर नहीं होगी, हर आत्मा के गुण को देखने का अभ्यास हो जाएगा ना, फिर मन जीते जगत जीत बहुत सहज हो जाएगा। जो मन में होता है वही वाणी में आता है, वही दृष्टि में आ जाता है। मन में प्रेम होगा, प्रेम भाव दृष्टि में आएगा। मन में क्रोध होगा, क्रोध का भाव दृष्टि में आ जाएगा। इसीलिए इसके लिए बाबा ने बताया है साक्षी दृष्टा होके। पता कैसे चलेगा हम मन जीते होते जा रहे हैं? हमारे अपने दृष्टिकोण से, साक्षी दृष्टा से। क्योंकि बाबा ने इसमें चार चीजें बताई हैं साक्षी दृष्टा। हाँ, एक होता है दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाली, आत्मा दृष्टा है। ये आंख जो है ये है दृष्टि, ये खिड़की है। आंख नहीं देखती बल्कि आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती है। तो दृष्टा जो है इस दृष्टि के द्वारा जब दृश्यों को देखता है, सारे संसार में ये दृश्य है, कोई भी दृश्य परिवार का है, बाहर का है, अंदर का, घर का, तो एक दृष्टा, दृष्टि, दृश्य। और जब इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा इतिहास में दृष्टांत बनता है। और वो दृष्टांत फिर समय प्रति समय वो ही बाबा बताते हैं, वो ही लिखा जाता है, वो ही इतिहास बन जाता है। तो हम सब का भी ये इतिहास जो बन रहा है ये हमारे इस दृष्टिकोण से, और दृष्टि हमारी कैसी साक्षी दृष्टा, और वो उसका आधार है मन के ऊपर। मन जितना इस स्थिति में स्थित होगा तो हमारी दृष्टि भी वैसी होगी। तो इन चीजों से हम पहचान सकते हैं अपने को कि हम कितना धीरे धीरे मन जीते जगत जीत बनते जा रहे हैं। और जितना जितना हम मन को जीतते जाएंगे, विचारों के ऊपर कंट्रोल होता जाएगा, उतना उतना हमारे ये दृष्टि, वाणी, ये सब स्वतः ही एक साक्षी होकर के हम कर्म करेंगे, जिसे बापा ने बताया डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। डिटैच होके न्यारी और प्यारी स्थिति, बस वो अपने आप होती जाएगी न्यारी और प्यारी। कर्म करेंगे, सब कर्म करेंगे, सेवा के और जो भी कर्म है, लेकिन स्थिति बिल्कुल न्यारी और प्यारी होती जाएगी। बस इसी स्थिति पर हम लोग बढ़ते जाएं और एक दूसरे को सावधान करते हुए अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त करते चलें। ओम शांति, ओम शांति।